करके सेवा करी, जैसे ईश्वर पुरीपाद जी ने अपने गुरु जी की सेवा की, ठीक इस रूप में जैसे हमारे गोविंद जी ने महाप्रभु जी की सेवा की, उस रूप में हम चलेंगे। जगदानंद जी भी संभव पूर्वक जो कभी करते थे उस स्थिति में पहले हम पहुंचे तब करें, और इसी स्थिति में हम यदि करने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इन चीजों को सब ध्यान में रखते हुए हमारे पूर्व आचार्यों का वैष्णवों का दे करके करेंगे स्थिति के अनुसार, और वहां तक पहुंचे नहीं अभी संभव हो गया ना, तब फिर लड़ाई झगड़ा हो जाए, वो भी गुरु हम भी गुरु, हम भी वैसे वैसे, बस गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए गुरु के प्रति अभी साधन में हम लोग हैं, उसी रूप में हम लोग चलेंगे, अपने गुरु को सम्मान और आदर दे करके उसी रूप में चलेंगे। इसलिए जब यहाँ पर जब ऐसा ठीक सेटअप हो जाएगा तो उस जगत में भी कृष्ण के साथ में राधा जी के साथ में हम लोगों का जैसा ही ऐसा विषम भाव पहले सख में आएगा, और इसके बाद में वात्सल्य, और उसके बाद में तो फिर मधुर में आएगा। व्यास जी ने इस शब्द का विचार किया है, तो ये बतलाया, पहले बतलाया हरि कथा श्रवण, कौन सी हरि कथा, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार में हरि कथा, संत वाला संत, दास वाला दास, सख्य वाला सख्य, मधुर वाला मधुर, और जो जैसे हैं उस रूप में सुनेंगे कथाओं को, और वैसे ही नामों को जो अपने लिए प्रिय है, जैसे सनातन गोस्वामी जी ने बतलाया श्री कृष्ण गोपाल हरे गोविंद, मुकुंद हे नंद किशोर कृष्ण, हासी जसोदा तनय प्रसीद, बल्लभी जीवन राज, जिसका जिस पर भाव है बस उस पर वो त्रेस देता हुआ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक साधारण साधक से भी लेकर के और बहुत उच्च कोटि के रघुनाथ दास दास गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर जी, हमारे पुरी वाले गोपाल गुरु और उनके ध्यानचंद, उन लोगों ने कितने तरह के सुंदर से सुंदर अर्थ रूप में इसका स्वागत किया, एक एक शब्द का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक का अर्थ किया है। इसमें कितने कृष्ण आए हैं, चार कृष्ण है ना, चार कृष्णों का चार प्रकार का अर्थ, पहले से आरंभ करके अंतिम वाले को अंतिम अंतिम रूप, और हरे का अर्थ हरे है कितने, आठ हरों को, आठ हरि का वहां पर हरे का आठ प्रकार का अर्थ किया, अंतिम चरम बिंदु अंत में जो हरे है, राम आए हैं चार बार, चारों रामों का एक अर्थ नहीं लिया, भावना के अनुसार में अपने अपने भजन के अनुसार में ऐसा लिया। इस प्रकार से नाम कीर्तन और ठाकुर जी की पूजा और वैष्णवों की गुरु की सेवा, ये चार चीजें बतलाई। यदि भक्ति की चाहता है तो इनको किसी भी कामना वासना को छोड़ करके, कैसे कामना वासना छोड़ेंगे, इसके लिए दिखलाया गया, जैसे हमारे सतयुग में कौन ऋषि उद्दालक अरुणी, अरुणी ने कैसी अपनी इच्छाओं को छोड़ करके गुरु की सेवा की, उद्दालक जी ने कैसे की, उसके पास आपने कृष्ण और बलदेव, उन्होंने सुदाम और बलदेव उसमें सभी आ गए, किस प्रकार से गुरु सेवा के लिए उन्होंने किया। एक साधारण कर्मी एकलव्य ने कैसी गुरु सेवा की, कैसी सेवा की, मैं जाऊं था जो तो बस खाने के जगह काट करके दे, खाना मत, गैया का दूध मत पीना, तुम मोटा होता जा रहा है, कैसे तू मोटा होता है बतलाओ तो, कैसे जीवित रहता है, तो गौओं को चराता हूं और गाय अपने बछड़े को दूध दे देती है, मैं भी पी लेता हूं, कभी ऐसा मत करना बछड़ा भूखा रह जाएगा, फिर उन्होंने कहा जी अब कैसे जीत रहा था 10-15 दिन के बाद, गैया के मुंह का फेन ले लेता हूँ, वो तो गिरी जाएगा तो मैं पोंछ लेता हूँ, ऐसा मत करना। किंतु क्या करना ये गुरु जी ने नहीं बतलाया। देखे जी क्या करता है, उनके बाद फिर भी जीवित रहा। तो जैसे अरे तू कैसे जीवित रहता है और कुछ बतला, कहे ये मत करना है। सब तरह से उसको बंद कर दिया है किंतु ये नहीं बतला दिया ऐसे रहना। तो वो एक दिन देखा जैसे अब तो जीवित रहना है गुरु जी की सेवा, गुरु जी की गैया कौन चराएगा। तो उसने अकबंद पत्ता तोड़ करके उसका दूध पी रहा था, इतने में आंख में लग गई, आंख छूट गई और गिर गया कुएं में। रात भर कुएं में रहा गुरु जी। अरे कहाँ गया उद्दालक, कहाँ उद्दालक गया, कहाँ गया उपमन्यु, कहाँ गया कहाँ गया। कहे गुरु जी मैं कुएं में हूं, कुएं में क्यों कर रहा है, मैं कुएं से उतारा। कहे गुरु जी मैंने खाया नहीं, कौन का पत्ता खा लिया। जब सारी विद्याएं उपनिषद वेद अवेद का तात्पर्य तुमको आ जाए, तो गुरु जी के हृदय में वेद का जो तात्पर्य था वो उनसे से संक्रमित हो गया। क्या अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये आ गया। सुखदेव गोस्वामी जी को व्यास जी ने क्या दिया, हम ब्रह्मास्मि कर रहे थे और उन्होंने लकड़ीहारों को और पक्षी पकड़ने वाले बहेलियों को कहा जाओ इसको बुला लो, अच्छे अच्छे सुख पक्षी तुम्हारे जाल में पड़ जाए, ये मंत्र याद कर लो। मैं तुमको याद करा दिया, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयु कर्णिकार, अब उसको भेज दिया। उस दिन सचमुच में पक्षी पड़े और वो सुखदेव गोस्वामी भूम के संपर्क में आ गए। सुखदेव जी अपने गुरु जी से पूछना जिसका ऐसा सुंदर रूप है उसके गुण कैसे हैं। तो उन्होंने दूसरे दिन उसको फिर सिखला दिया, अहो वकीयम तनकाल, सुनाते ही एकदम अपने आप वो पिंजरा में आ गया और वो व्यास जी के पास में, व्यास जी ने उसको श्रीमद् भागवत, ये व्यास जी की कृपा है, समस्त जगत व्यास जी का नहीं है। कृष्ण के प्रति अहत की भक्ति, और वो भी कैसी अंतिम चरम बिंदु तक कैसी भक्ति हो सकती है, आज तक किसी ने नहीं दिखाया, इसे समस्त विश्व उनका ऋणी है। इसलिए गुरुदेव अपने जन्म के दिन में व्यास जी की पूजा करते हैं और उनकी परंपरा की पूजा करते हैं, और ये सबके लिए जरूरी है सर। और नहीं अपने अपने गुरु तक रह जाएगा तो गुरु को भी छोड़ देगा। गुरु की ऐसी करुणा है जो हम आज समझते नहीं है। We don't realize the mercy of Gurudev. If we knew, then there will be no quarrel with Gurudev for only for things. जागतिक सुख सुविधाओं के लिए गुरु जी से विरोध नहीं हो सकता है। एक इतनी महान चीज को देते हैं गुरुदेव। जगत के लोग बहुत कम रेयर लोग इन चीजों को समझते हैं, जब गुरु के कितने ऋणी हैं, गुरु क्या देता है नहीं समझते हैं। इन ऋषियों ने क्या किया, सर्वस्व त्याग करके उनकी चरण के सेवा में लगे रहे। सुखदेव गोस्वामी आनंद में मस्त रहते थे उसमें, ब्रह्मानंद में, और उसको छोड़ दिया भिक्कार करके और कहा आए व्यास की सेवा में जुट गए। इसलिए इसको चीज को नहीं समझेगा वो क्या गुरु की सेवा करेगा, प्राण भी गुरु के लिए दे दे तो वो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए जन्म जन्मांतर उनका ऋणी रहेगा, यहां तक कि सिद्ध होने पर भी उनका ऋणी रहेगा, इनका ऋण कभी भी दूर हो जाएगा, दूर नहीं होगा, माता पिता भाई बंधु का हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक गुरु अपने जन्म के दिन में अपने गुरु और परंपरा का सर्व पूजा करते, हम लोग भी ऐसा करेंगे। इसलिए नहीं कि तुम लोग भी हम लोगों के बाद में फिर आचार्य हो जाओगे तो अपनी पूजा शिष्यों से करा लेना, ऐसा नहीं। जगत इन सब चीजों को सीखे। चैतन्य चरितामृत में गुरु तत्व के संबंध में पहले ही परिच्छेद में आदि के पहले ही गुरु
गुरु गुरु गुरु ने भक्तानी ईशा ईश भक्तानी ईशा बता रकान तत् प्रकाश संस्थ ये पांच तत्वों का वहां निरूपण करके गुरु तत्व के संबंध में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है गुरु तत्व में, विशेष करके आजकल का थ्रीजन का विषय हो गया है शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। और इस जन्म में हमको जो गुरु मिलेगा वो दूसरे जन्म में मिलेगा कि नहीं, ये बड़ा भारी कंफ्यूजन का विषय हो गया। कोई कंफ्यूजन का विषय नहीं है, कोई गुरु तो कृष्ण स्वरूप है ना, क्या कृष्ण गुरु कृष्ण रूप हम शास्त्र प्रमाण, शिक्षा गुरु के ज्ञानी कृष्ण स्वरूप और दीक्षा गुरु कृष्ण का रूप है। तो यदि कृष्ण गुरु कृष्ण का रूप है और उनका स्वरूप है तो गुरु चेंज कहां हुआ, चेंज हुआ किसी भी जन्म में? गुरु तो वही रहेगा। अभी हमारी बुद्धि स्थूल होने से हम इस चीज को नहीं समझते। Always we question like this that in this my birth my guru will be again it will guru will meet in another birth or not? Krishna is not changeable and guru is like Krishna. Then how it can that it is changed? So certainly it is not changed. गुरु तो कहते हैं कि हम पति के जन्म में आएंगे और तुमको जब तक नहीं हम उद्धार कराएंगे तब तक हम आते रहेंगे। तो एक ही गुरु के एक ही रूप भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। किस रूप में तब ये समझ लो कि गुरु जब कृष्ण रूप है तो इसलिए कोई भी चिंता की बात नहीं है। जैसा भी हमको साधन करना है अपने गुरु के ऊपर में निष्ठा रखना है, ये चीज ठीक रहो, साधन भजन अच्छी तरह से करो और देखो जैसे सब ठीक रहेगा। कृष्ण स्वयं ही गुरु होकर के आते हैं ऐसा भी प्रमाण है, या अपने वैसे शक्तिशाली लोगों को राधा जी भेज देती हैं अपनी परिकर को किसी को, या राधा जी व्यवस्था कर देती हैं। इसलिए हम लोग गुरु के पथ में रह करके अच्छी तरह, जैसे हमारे रूप रघुनाथ जी सबको सम्मान देते हुए भजन किया, इस रूप में भजन करना। रूप और गोस्वामी और सनातन गोस्वामी में कभी झगड़ा हुआ शिष्य के लिए? ये हमारा शिष्य हो और उनका शिष्य हो, हम तो समझते छह गोस्वामी किसी ने शिष्य ही नहीं किया, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट। एक गोपाल भट्ट को देखते हैं कि थोड़ा सा शिष्य थी, वो भी गोस्वामियों के कहने पर। हमारे लोकनाथ गोस्वामी कभी शिष्य ही नहीं करते थे, बड़ी मुश्किल से जीव गोस्वामी के कहने पर एक को उन्होंने शिष्य, किंतु कोई भी उनका शिष्य हो सकता है, कोई भी उनसे यदि मथाचार्य व्यास जी का शिष्य हो सकते हैं ने? हम उनके जीवन से अनुप्राणित यदि हो, उनके विचारों को ले आचारों को भी लें तो उनके शिष्य हैं। शिक्षा गुरु तो इसी को कहते हैं, उनके विचारों को लेंगे उनके शिक्षाओं को लेंगे और ठीक वैसे ही चलेंगे। जैसे रूप के समीप कोई बैठा हो और वृंदावन में यहीं पर बैठते थे और सब समय उनके पास में बैठा, सब समय उनकी चर्चा में हो, उनके उपदेशों को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके शिक्षा गुरु उनके नहीं होंगे? वो जरूर होंगे। इसलिए हमारे बंदे हम श्री गुरु श्री जुष्पद कलम श्री गुरुन वैष्णवांश श्री रूपम साग्रजातम सहगम रघुनाथानितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण इसमें अपने गुरु को दीक्षा लेकर के बाकी को शिक्षा गुरु में ले लिया, तो ये सब अपने दीक्षा गुरु से कम हो गए?
नहीं, तो
चैतन्य महाप्रभु हमारे शिक्षा गुरु हैं, तो दीक्षा गुरु से कम है। इसलिए ये सब भ्रम में न पड़ करके, भेद बुद्धि में नहीं आकर के गुरुदेव को, गुरु तत्व को अखंड गुरु में लेकर के रख करके हम उस प्रकार से भजन करें। वहां पर कोई द्वेष हिंसा इत्यादि का कोई भाव ही नहीं। हमारे चैतन्य चरितामृत में या चैतन्य भागवत में व्यास पूजा की ही बात उल्लेख है, चैतन्य भागवत है, चैतन्य भागवत। वहां पर हमारे नित्यानंद प्रभु जी ने वो व्यास पूजा की थी, महाप्रभु जी के गले में पुष्प की माला देकर के। उसमें बहुत से सुंदर सुंदर सब विचार हैं भीतर में, उन सब विचारों को लेकर के हमको चलना चाहिए। कल हम लोग अपने गुरु जी के संबंध में नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद सुत सस्मद भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज के संबंध में हम बतलाएंगे। तब ये समझ लीजिए, गुरु जी का जीवन चरित्र और उनके गुरु चरित्र एक है, मिला हुआ। जैसे कृष्ण की बात हम कहेंगे तो राधा जी को छोड़ करके, अच्छा हम कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं तो कौन प्रणाम सबसे अच्छा होगा? जानते हैं, जिसमें राधा जी से संबंधित हो वो प्रणाम सबसे अच्छा होगा। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। अंत में राधा जी को ले गया, राधा जी को प्रणाम कर रहे हैं, राधा जी को प्रणाम करें तो क्या करेंगे, कैसे प्रणाम करेंगे? राधे वृंदावनाधीशे करुणामृत वाहिनी कृपया निज पादाब्ज दास्यम मह्यम प्रदीयताम। अच्छा, उसमें भी ऐसा होगा कि कृष्ण से संबंध उसमें आ जाएगा। इसलिए एक को छोड़कर के अलग नहीं है। इसलिए हम अपने गुरु जी का जो महिमा वर्णन करेंगे उसमें प्रभुपाद जी का महिमा अपने आप आ जाएगा, वैष्णव की महिमा सब आ जाएगा अपने आप। कृष्ण का लीला चित्त वर्णन करते करते श्रीमद भागवत में ये कृष्ण का लीला चरित्र रह गया बीच में, और हो गया किसका, गोपियों का और राधा जी का ही चरित्र अधिक वर्णन हो गया। और उसमें अंधे लोग देखते हैं कि राधा जी का नाम ही नहीं है। राधा जी क्या कृष्ण का अंत में प्रणाम प्रणाम न करके वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पादयन अभिज्ञत जासांग हरि कथोत्कीत पुनात भुवन त्रयम आसाम हो चरण रेणी जिसाम हम श्याम वृंदावने सौसुधीनाम जस दुस्सजन सजन आर्य पसंत हित्वा भेजे मुकुंद पदवीं सुदभे मृमिज्ञाम। यहां भी देखते हैं गोपियों का उत्कर्ष दिखलाया। इसलिए कृष्ण भक्तों को छोड़ करके, स्वरूप शक्ति राधा जी को छोड़ करके, गोपियों को छोड़ करके, सखाओं को छोड़ करके अकेले नहीं। वैसे गुरु भी उनके गुरु जी का, गुरु जी की महिमा किस लिए, गुरु की महिमा किस लिए होती है? जो अपने गुरु जी के सेवक हैं वही उनकी महिमा है। जो गुरु अपने सेवक की, अपने गुरु की सेवा नहीं करता वो कभी भी गुरु न होने योग्य ही नहीं है, वो गुरु नहीं है जो खुद अपने को गुरु मानता है। इसलिए गुरु कौन है, जो अपने गुरु को संपूर्ण से उनके प्रति आत्मसमर्पण करके, उनकी सेवा करके, उनकी प्रति वंशा मनोकामना को पूर्ण करता, मनोभिष्ट सेवा करता है, वही गुरु सेवक है। हमारे गुरु जी में प्रधान ये गुण है कि अपने गुरु जी के लिए उन्होंने सर्वस्व किया, अपना प्राण भी उनके लिए समर्पित। गुरु सेवा के लिए छोड़ करके और कोई उन्होंने जीवन में कोई विचार नहीं किया, ऐसी उनकी निष्ठा थी। यदि उनके गुरु पर ऊपर में कोई कटाक्ष कर दिया थोड़ा भी तो क्या करते थे, चुप नहीं बैठ सकते थे। कुछ लोग धैर्य धारण करते हैं, धैर्य तो ठीक है, बिगड़ना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किंतु जगत में यदि उसकी मैया को कोई गाली दे रहा है तो वो चुप बैठेगा तो वो हिजड़ा है। ऐसे ही भक्ति, भगवान और भक्त, तीनों के विरुद्ध कोई बात कर रहा है और किसी को क्रोध नहीं हुआ तो वो परमार्थ राज्य का हिजड़ा है, वो परमार्थ से उसका कोई संबंध नहीं। भक्ति के विरुद्ध कोई कर रहा है कोई बात, कोई भगवान का विरोध ही कर रहा है, कोई गुरु वैष्णव का विरोध में बात कर रहा है, उस समय चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, निरपेक्ष नहीं होना चाहिए, चुपचाप कह नहीं लेना चाहिए, उस समय उसका खून खौल नहीं उठता, तब लाठी मारो, लंका को एकदम जला करके भस्म कर देंगे, ये तीनागति से निपटता है। इसलिए गुरु जी के कोई निंदा करा चुपचाप सुन लिया, वैष्णव की निंदा करा सुन लिया, भक्ति की निंदा करा सुन लिया, ये वैष्णव का नहीं, ये निरपेक्षता निरपेक्षता नहीं। इसलिए गुरु जी ने बहुत से अवसरों पर ऐसा देखा गया, जबकि कलकत्ते नवदीप में परिक्रमा के समय उनकी परिक्रमा को बाधा देने के लिए वहां के गोसाई लोगों ने, वहां के स्मार्ट ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया। क्यों विरोध किया? अब लोग हमारी पूजा नहीं करेंगे, इसी की पूजा करेंगे। और नवदीप यहां से उठ गया और मायापुर महाप्रभु का जन्म दिवस जन्म मनाया जा रहा है, जन्म स्थान, और लोक परंपरा से हम लोग गोस्वामी हैं, ये तो कहता है कि गुण से गोस्वामी होते हैं, ये यदि मांगने लगे तो हम लोगों की कोई पूजा नहीं करेगा, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, ना निरक्षर हैं, जैसे हैं कुछ नहीं जानते, तभी लोग हमारी पूजा करते। और ये क्या कहता है? चतुर्विधा चतुर वर्ण न्यास सिस्टम, गुण कर्म विभाग, गुण और नहीं है तो गोस्वामी मत कहो उनको, बस इस पर बिगड़ गए। उन्होंने क्या किया? अच्छे अच्छे नवयुवक लड़कों को लेकर के, शिक्षित समाज के प्रेम के लड़कों और लड़कियों को लेकर के दीक्षा देकर के उनको भगवत भक्ति में बढ़ाया। समाज के लोग कुछ खिप्त हो गए, अरे ये सब अच्छे अच्छे लड़कों को बिगाड़ रहा है, कहा ये विवाह शादी करके संसार में और मरेंगे और अच्छी तरह से ये डूबे, ये न करके उनको भगवान की भक्ति में लगा रहा है। इसलिए वो लोग भी बिगड़ गए। बहुत प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे बहुत से उस समय में न जानने के कारण हमारे शत्रु हो गए, एक न एक दिन ये समझेंगे और हमारे प्रति इनका भाव बदलेगा। सचमुच में पीछे से ऐसा हुआ, लोगों ने समझा। तो गुरु जी ने उस समय में अपना वस्त्र उनको दे करके और गुरु जी का वस्त्र पहन लिया, गुरु जी नहीं दे रहे थे, और गुरु जी का वस्त्र जबरदस्ती निकाल करके खुद बन करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती बन गए और प्रभुपाद जी को वहां से निकाल करके मायापुर में भेज दिया, किसी को पता ही नहीं लगा। और फिर इतने में पुलिस आ गई, फिर अपने आप ये भी चले आए। एक बार हम लोगों ने देखा, मैं हम लोग मथुरा में थे, हमारी पत्रिका भागवत पत्रिका निकलती थी, अब थोड़ी सी बंद हो गई है। तो उस समय निम्बार संप्रदाय एक है, तो उसने लिखा कि महाप्रभु जी केशव काश्मीरी के शिष्य थे, केशव काश्मीरी ने महाप्रभु जी को परास्त कर दिया और परास्त करके महाप्रभु जी को जुगल मंत्र दिया और मधुर रस की उपासना में उनको प्रवेश कराया। हमने गुरु जी महाराज जी को लेकर के वो पढ़ करके सुनाया, गुरु महाराज कांपने लगे क्रोध से, बोले जा भी कलम लाओ। बस कलम ले आया और मैं कागज ले लिया, कहे लिखो। बस बंगला में उन्होंने 10-15 लाइन के वो लिखाया, निम्बार्क नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ। और हम लोगों के संप्रदाय में निम्बादित्य चतुस्तना शास्त्र में मिलता है, यदि निम्बार्क नाम का कोई व्यक्ति हुआ होता तो उसके साहित्य होते, किंतु जीव गोस्वामी जैसे धुरंधर विद्वान ने, मध्य संप्रदाय के किसी विद्वान ने या किसी भी संप्रदाय के किसी विद्वान ने निम्बार्क शब्द का उल्लेख नहीं किया है। और सचमुच बात ऐसी है, इसलिए ये धप्पाबाजी है। धप्पा समझते हैं बंगला शब्द, इसलिए यह सब चैतन्य चैतामित इत्यादि के वृद्ध बातें हैं, निम्बादित्य हैं, वो वैष्णव के अंतर्गत है। इसके बाद में वो का करके रजिस्ट्री कर करके भेज दिया उनके पास में, हिंदी उसमें लेकर के पत्रिका में प्रकाशित किया। पत्रिका उनके यहाँ जाती थी, आदान प्रदान होती थी। वो लोग पढ़ करके बड़े बिगड़े और कोर्ट में नालिश कर दिया गुरु जी के ऊपर में, मानहानि केस 4 लाख रुपए का, उसमें 4 लाख रुपए का मानहानि। गुरु जी ने उसका उत्तर दिया, अपने बलबूते पर करेंगे ऐसा, मैं इसी के लिए आया हूं, मैं साबित करूंगा। निम्बार्क नाम का कोई व्यक्ति नहीं है और ये 4 लाख रुपया आप लेंगे कि नहीं लेंगे वो पीछे देखा जाएगा। और लिख करके और पत्रिका में फिर छपवाया, फिर उनके पास में गया। उनके वकीलों ने परामर्श किया, बड़े बड़े वकील थे, आप उनसे मत लगिए नहीं तो केंचुआ फोड़ने, मैंने केंचुआ एक होता है वो उसको पकड़ने जाएंगे, सांप निकल कर तुम्हें काट देगा और तुम्हारा अस्तित्व ही विलीन हो जाएगा, घर में चुपचाप बैठे रहो, बस चुपचाप। उसी प्रकार से प्रभुपाद के विरुद्ध सहजिया सावड़ी का सहजिया दल था, प्रभुपाद तो कहता था ये रस कुछ नहीं, ये गुठली चूसते हैं, गुठली आदमी चूस करके अब फेंक देता है ना, या खोसा, खोसा किसको कहते हैं, छिलका, ये छिलका चूसने वाले हैं, रस से कोई संबंध नहीं। हम लोग राष्ट्र पंचाध्याय इत्यादि लीलाओं का वर्णन करते हैं, सुनते हैं, रासलीला करते हैं और सबको यही सुनाते हैं। प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती कुछ नहीं जानते थे, ये सब हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य हैं। इस तरह से उन्होंने लिखा और गुरु महाराज जी ने कहा जी हम 5 प्रबंध लिखेंगे और इसका उत्तर देंगे। सावड़ी सहजियार भीते गलत, सावड़ी सालार भीते गलत, सावड़ी सालार गाली भी है और सावड़ी सालार रंधन साला पाप साना धर्मशाला, ये कोई बुरी बात नहीं है। और सावड़ी रूपी साला के भीत में ही रावण सीता हरण, और ऐसे 5 करके दे दिया और कुछ अधिक नहीं लिखा, एकदम नीचे से ऊपर तक सब लोग जल गए और उनके विरुद्ध में वैसा ही केस किया मेदिनीपुर। हम लोगों को मुझे डर लगा। गुरु जी से कहा जी गुरु जी ये तो आपने किया, किंतु एक बात कीजिए, उसमें केस गुरु जी के नाम से नरसिंह महाराज, बामन महाराज, त्रिविक्रम महाराज और नारायण महाराज, इन लोगों पर केस हुआ था। हम लोग संपादक थे ना, तो गुरु जी ने कलकत्ते का सबसे बड़ा वकील को किया और उसको खड़ा कर दिया। वो एकदम गर्व गर्व करके सिंह की भांति कहने लगा, हम इसको प्रमाण करके रहेंगे जो ये है ठीक है। बस वो लोग सब डर गए। जज ने कहा भैया इनसे माफी मांग दो और आप फिर मत लिखें। मैंने कहा जी मैं तो लिखूंगा, हम तो सन्यासी हैं, हम किसी की बात नहीं, हम तो समाज का संस्कार करने के लिए और भजन करने के लिए आए। इस तरह से वहां पर भी अब फिर तब से कलम उन्होंने गौड़ीय वैष्णवों के संबंध में कभी नहीं लिखा। निम्बार्क वाले भी उस समय से बंद कर दिया। ऐसे महान तेजी थे गुरु जी। इसलिए हमारे भक्ति सारंग गोस्वामी जी ने, जो प्रभुपाद के भी प्रिय थे, उन्होंने इनको उपाधि दी पाषंड गजई का सिंह। पाषंड जो गज है हाथी, उसको भी दंड देने वाले ये सिंह के समान है। सचमुच में वैसे थे, बड़े सुंदर वक्ता थे, बहुत ही अद्भुत, और राइटर भी वैसे थे जैसे वक्ता वैसे राइटर, और वैसे ही बड़ी सुंदर अलंकृत भाषा उनकी थी। जो गौड़ीय पत्रिका हम लोगों का उस समय का देखेंगे, उन्होंने लिखवाया है अद्भुत। हम लोग 10 किताब लेकर के तब थोड़ा सा लिखते हैं, उनको किताब किताब की कोई जरूरत नहीं। मायाराज की जीवनी, वो त्रिशूल नाम अचिंत भेदा भेद, और कितने प्रबंध, सब अद्भुत अद्भुत। ये सब उनकी गुरु सेवा है, ये सब गुरु सेवा है जो साधारण लोगों के लिए संभव है। आचार विचार के द्वारा, लेखनी के द्वारा, भाषण के द्वारा उन्होंने जीवन भर इसी तरह से किया। वैसे गुरु जी के आज हम लोग व्यास पूजा का अधिवास आज हम मना रहे हैं। वो हम सब लोगों पर, आप लोगों पर कृपा करें, हम लोग वैसे गुरु निष्ठा के साथ में भजन कर सकें और दूसरों की भी सहायता कर सकें। आज यही करते हैं पंचाकल। कल हम लोग 9 बजे से आरम्भ करेंगे। अभी रात में इसको सब ठीक कर देंगे और 9 बजे से बैठ करके कीर्तन इत्यादि करेंगे। यदि जिसको कुछ भी जाना वाना हो, परिक्रमा इत्यादि, तो 9 बजे तक, 9:30 बजे तक कर करके अपना तैयार होकर के आ जाएंगे। पहले हम लोग गुरु जी की ये सब उनका जीवन चरित्र, अपराकृत जीवन के चरित्र के संबंध में बोलेंगे और इसका बाद में विभिन्न वक्ता लोग बोलेंगे और अंत में उनके चरणों में पुष्पांजलि देंगे। पुष्पांजलि माने क्या? उनके जीवन चरित्र में हम लोगों ने आचार और विचार में जो सीखा उसको हम अपने जीवन में धारण करेंगे। ये सबसे अच्छी पुष्पांजलि। जैसे वो भजन करते थे वैसा ही हम लोग भी भजन करेंगे इस बात, यही उनके चरणों में पुष्पांजलि। आप लोग भी भविष्य के निधि हैं, ऐसे ही भजन करें और उनके पद चिन्ह